بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آل عمران کی 60ویں سے لے کر 63ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہے پیغمبر، ستی وہی ہے جو آپ کے پالنہار کی اور سے ہے، اتہ سندیہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ تو ہے پیغمبر، جو کوئی بھی ایشوریہ سندیش وحی دوارا آپ کے پاس آنے والے گیان کے پشچات آپ سے عیسیٰ مسیح کے بارے میں بحث اور وواد کرے، تو اسے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے پتروں کو لائیں اور تم اپنے پتروں کو، ہم اپنی استریوں کو لائیں اور تم اپنی استریوں کو لاؤ، ہم اپنے آتمیے لوگوں کو اور تم اپنے آتمیے لوگوں کو لاؤ، تو پھر ہم ایشور کے سمکش پرارتھنا کریں اور ایک دوسرے کو ابھیشاپ دیں، تتھا جھوٹ بولنے والوں کے لیے ایشوریہ لعنت ارتھات ابھیشاپ نردھارت کریں۔ निसंदेह ईसा मसीह के जीवन की सच्ची कहानी यही है और ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है और निसंदेह ईश्वर प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। फिर यदि वे लोग सत्य की ओर से मुंह मोड़ लें तो जान लो कि ईश्वर बुरे कर्म करने वालों को भली भांति जानने वाला है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आज शनिवार है, जून की 26, ज़ीक़ादा की 15 और तीर माह की 5 तारीख। एक घंटे तक चलने वाले कार्यक्रम का आरंभ विगत की भांति हम विश्व समाचारों से करेंगे। विश्व समाचारों के बाद आप राजनैतिक चर्चा सुनेंगे। राजनीतिक चर्चा के उपरांत हम आपको एक विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे और सभा के अंत में आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम नया सवेरा। श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा है कि देश में कोरोना के फैलाव में कमी आई है, जबकि आज ईरान द्वारा बनाई गई एक और कोरोना वैक्सीन का अनावरण हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि तेहरान कभी भी परमाणु समझौते से अलग नहीं हुआ था कि अब उसमें वापस आए। हमास का कहना है कि ज़ायनी शासन के साथ बंदियों के आदान प्रदान के मामले में प्रतिरोध को अभी भी वरीयता हासिल है। दिल्ली पुलिस ने इसराइली दूतावास के करीब हुए धमाके के मामले में कारगिल के 4 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि देश में कोरोना के फैलाव में कमी आई है और अब केवल कुछ प्रांतों की स्थिति अलग बनी हुई है। राष्ट्रपति डॉ हसन रूहानी ने कोरोना से मुकाबले की राष्ट्रीय समिति की बैठक में कहा, ईरान को अब कोरोना की किसी नई लहर का सामना नहीं है, लेकिन इस बारे में 100% संतुष्ट भी नहीं हुआ जा सकता। उन्होंने कहा कि अब भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉ हसन रूहानी ने कहा कि रूस सहित विश्व के विभिन्न देशों, पूर्वी एशिया और ईरान के इर्द गिर्द के कुछ देशों को कोरोना की नई लहर का सामना है। उन्होंने कहा कि कोरोना की ईरानी वैक्सीन ईरानी राष्ट्र का गौरवपूर्ण काम है। उनका कहना था कि इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता की ओर से वैक्सीन की डोज लिए जाने का काम वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हसन रूहानी ने कहा कि इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई बहुत पहले यहां तक कि विदेशी कोरोना वैक्सीन की डोज ले सकते थे, मगर उन्होंने ईरानी वैक्सीन के प्रयोग को ही वरीयता दी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता का ये कदम हमारे देश के वैज्ञानिकों के मनोबल बढ़ने का कारण बनेगा और इस प्रकार के काम की तुलना किसी भी भौतिक चीज से नहीं की जा सकती।
ईरान के स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में देश में बनाई गई स्पुतनिक वी वैक्सीन का अनावरण हुआ। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री सईद नमकी की उपस्थिति में एक समारोह में इस वैक्सीन का अनावरण हुआ। स्पुतनिक वी का अनावरण ईरान के अलबुर्ज प्रांत में एक मेडिकल कंपनी के स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में किया गया। इस कार्यक्रम में सईद नमकी ने कहा कि ईरान समेत संसार के 60 से अधिक देशों में स्पुतनिक वी वैक्सीन का पंजीकरण हो चुका है, जिसने अपनी उपयोगिता दिखाई है। इस्लामी गणतंत्र ईरान और रूस के बीच इससे पहले स्पुतनिक वी वैक्सीन के उत्पादन के बारे में सहमति हुई।
ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रतिबंधों का ईरान के रक्षा विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रिगेडियर जनरल हातिमी ने खाने मिल्लत न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि विश्व भर के देश अमेरिका के हथियारों के प्रतिबंधों के विस्तारों की मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान ने क्रांति की शुरुआत से ही प्रतिबंधों का सामना किया, इसलिए तेहरान के रक्षा विकास पर प्रतिबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईरान के रक्षा मंत्री का कहना था कि अमरीका ईरान के खिलाफ फिर से हथियारों के प्रतिबंधों को लागू करवाना चाहता है, लेकिन अमरीकी अधिकारी इसमें सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका की ये मांग पक्षपातपूर्ण है कि दुनिया भर के देश उसकी इस मांग के सामने नहीं झुकेंगे और अमरीका का साथ नहीं देंगे।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि तेहरान कभी भी परमाणु समझौते से अलग नहीं हुआ था कि अब उसमें वापस आए। सईद खतीबजादे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका को गैर कानूनी प्रतिबंधों को समाप्त करने, अपनी जिम्मेदारियों पर प्रभावी ढंग से अमल करने और परमाणु कार्यक्रम में वापस आने का फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान कभी भी समझौते से अलग नहीं हुआ था जो अब उसमें वापस आए। सईद खतीबजादे ने कहा कि अमेरिका और यूरोप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका के एकपक्षीय रूप से परमाणु समझौते से निकलने, ईरान के विरुद्ध गैर कानूनी प्रतिबंध लगाने और यूरोप की खामोशी के बावजूद तेहरान परमाणु समझौते पर अड़िग रहा।
संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने सीरिया के कुछ क्षेत्रों में विदेशी सैनिकों, अलगाववादी और आतंकवादी गुटों की उपस्थिति पर कड़ी चेतावनी दी है। मजीद तख्ते रवानची ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की ओर से मध्य पूर्व की स्थिति पर की जाने वाली बैठक में सीरिया के विरुद्ध इसराइल की कार्रवाइयों और इस देश के कुछ क्षेत्रों में विदेशी सैनिकों, अलगाववादी और आतंकवादी गुटों की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप सीरिया में उत्पन्न होने वाली अस्थिरता की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व स्थिरता पर बुरे परिणाम सामने आएंगे। मजीद तख्ते रवानची ने सीरिया के पुनर्निर्माण के बारे में कहा कि इसे और पलायनकर्ताओं की वापसी को संविधान की समिति की कार्रवाई में होने वाली प्रगति से संबंधित किए जाने से केवल सीरिया की जनता के लिए नई समस्याएं उत्पन्न होंगी।
हमास का कहना है कि जानी शासन के साथ बंदियों के आदान प्रदान के मामले में प्रतिरोध को अभी भी वरीयता हासिल है। ये बात हमास की ओर से जाने सैनिक गिलआद शालित की गिरफ्तारी की वर्षगांठ पर कही गई। फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने शनिवार को कहा कि उसकी सैन्य शाखा इज्जुद्दीन कसाम ब्रिगेड के नियंत्रण में इसराइल के कई सैनिक हैं। हमास ने कहा कि वो जानी शासन की कैद में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की आज़ादी के बारे में एक समझौते के प्रति आशावान है। इससे पहले अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद अज़ैफ ने कहा था कि इसराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई का मामला हमास के लिए विशेष महत्व रखता है। सन 2006 में अल कसाम ने गिलआद शालित को गिरफ्तार किया था और सन 2011 में 1027 फिलिस्तीनी बंदियों के बदले में उसे रिहा किया गया था। शालित की गिरफ्तारी को प्रतिरोध की एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में माना जाता है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल नई दिल्ली स्थित इसराइली दूतावास ब्लास्ट मामले में गुरुवार को करगिल निवासी 4 छात्रों को पूछताछ के लिए करगिल से हिरासत में लिया है, जिन्हें बाद में गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। 4 छात्र 26 वर्षीय नजीर हुसैन, 25 वर्षीय जुल्फिकार अली वजीर, 28 वर्षीय अयाज हुसैन और 25 वर्षीय मुजम्मिल हुसैन लद्दाख के करगिल ज़िले के थांग गांव के रहने वाले हैं। द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से चारों को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस का दावा है कि वो इस दौरान ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि इन छात्रों का इसराइली दूतावास ब्लास्ट से क्या संबंध है। याद रहे कि 29 जनवरी की शाम इसराइली दूतावास के बाहर आईडी विस्फोट हुआ था, हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ था। इसराइल ने इसका आरोप ईरान पर मढ़ने का प्रयास किया था। एनआईए ने नए सिरे से इस मामले की जांच शुरू की है, जिसमें इसराइल की खुफिया एजेंसियों को भी शामिल किया गया।
भारत में 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 7 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को विरोध प्रदर्शन करते हुए पूरे 7 महीने हो गए हैं। इस अवसर पर किसानों ने शनिवार को देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के आयोजन का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण उसे रद्द कर दिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने अगले महीने 2 ट्रैक्टर रैलियों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 9 और 24 जुलाई को ट्रैक्टर रैलियों का आयोजन किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने अपने आंदोलन के विस्तार का फैसला किया है और इसी क्रम में 9 जून की रैली में शामली और बागपत के लोग मौजूद रहेंगे। ये 10 जुलाई को सिंधु बॉर्डर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 24 जुलाई को एक और रैली का आयोजन होगा, जिसमें मेरठ और बिजनौर के किसान शामिल होंगे, और 25 जुलाई को ये रैली गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं।
मिनेसोटा के एक जज ने 46 वर्षीय अमरीकी मूल के नागरिक जॉर्ज फ्लाइट की हत्या के आरोप में पूर्व अमरीकी पुलिस अधिकारी को 22.5 बरस की कैद की सजा सुनाई है। पूर्व अमरीकी पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन को पिछले साल मई के महीने में जॉर्ज फ्लाइट की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी वीडियो सामने आने के बाद अश्वेत लोगों के विरुद्ध पुलिस के हिंसक व्यवहार के खिलाफ विश्व स्तर पर प्रदर्शन हुए थे। जूरी ने 45 वर्षीय डेरेक चाउविन को जॉर्ज फ्लाइट की हत्या के आरोप में अपराधी घोषित किया है। चाउविन के विरुद्ध फैसले को अमेरिका के पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर एक महत्वपूर्ण सजा के रूप में देखा जा रहा है।
बहरीन में शिया मुसलमानों के धर्मगुरु शेख इसहाक आसिम ने कहा है कि अमेरिका ने उन इस्लामी चैनलों की वेबसाइटों को बंद करके अपराध किया है जो प्रतिरोध की भावना को विस्तृत कर रहे हैं। अल आज समाचार एजेंसी के अनुसार शेख इसहाक आसिम ने एक बयान जारी करके अमेरिका द्वारा इस्लामी वेबसाइटों को बंद करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस बयान में आया है कि सबको ये जानना चाहिए कि अमेरिका और उसके पिट्ठू जिस भ्रष्ट संस्कृति को इस्लामी देशों पर थोपना चाहते हैं, वो वास्तव में मूर्खतापूर्ण काम है जो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है।
सऊदी सैन्य गठबंधन के लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर यमन के कई इलाकों पर भीषण बमबारी की है। अलमसीरा टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार की रात यमन के विभिन्न इलाकों पर 16 बार बमबारी की। सऊदी सैन्य गठबंधन के लड़ाकू विमानों ने मआरिब समेत कई इलाकों पर हवाई हमले किए। इससे एक दिन पहले भी सऊदी लड़ाकू विमानों ने सरवा इलाके पर कम से कम 12 और मारिब में 6 बार बमबारी की थी।
तालिबान गुट के प्रवक्ता का दावा है कि तालिबान अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। शिया विरोधी समझे जाने वाले चरमपंथी गुट तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर तालिबान का पूरा ध्यान दिया है और देश में अफगान नागरिकों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वे हमारे हमवतन हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे हिजबुल्ला महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह के ताज़ा भाषण के बारे में। और फिर बात करेंगे यमनी सेना और स्वयं सेवी बलों द्वारा चलाए जा रहे सैन्य अभियान की
अमलियतुन अस्करियतुन वसिआब।
और अंत में चलेंगे भारत, जहां कश्मीरी नेताओं और मोदी की बैठक के बारे में प्रतिक्रियाओं का क्रम जारी है।
भारत प्रशासित राज्य जम्मू कश्मीर में नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद
तो सबसे पहले चलते हैं लिबनान और बात करते हैं सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा प्रतिरोध समर्थक साइटों और चैनलों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर दी गई प्रतिक्रिया की। इस संबंध में बैरूत से IRIB के संवाददाता हसन अजीम जादे एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम की आवाज में।
सैयद हसन नसरुल्ला का कहना है कि जन जागरूकता को रोकना और झूठ के दरवाजे खोलना प्रतिरोध मीडिया के खिलाफ हाल ही में अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य है। हिजबुल्ला के महासचिव ने फिलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन करने वाली वेबसाइटों और प्रतिरोधक चैनलों पर अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा। मीडिया माध्यमों ने कुद्स की तलवार नामक ऑपरेशन में व्यापक भूमिका निभाई है और फिलिस्तीनियों का समर्थन किया। साथ ही संचार माध्यमों द्वारा इसराइल के खिलाफ स्टैंड और क्षेत्र में अमेरिका की अशांति पैदा करने वाली नीति, आतंकवाद के विरुद्ध और बढ़ते तकफीरी विचारधारा के खिलाफ खुलकर बोलना अमरीकी प्रतिबंधों का कारण बना। ये कार्रवाई हमारे लोगों और दुनिया के स्वतंत्र विचारकों के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विभिन्न अमेरिकी सरकारों के झूठे दावों की पोल खोलता है और साबित करता है कि प्रतिरोध की साइटों और चैनलों पर उसके आरोप बेबुनियाद हैं। सैयद हसन नसरुल्ला ने एक अन्य झूठे अमेरिकी दावे का उल्लेख करते हुए कहा कि वो हिजबुल्ला के खिलाफ लेबनानी सेना को अवास्तविक सैन्य समर्थन दिखाने की कोशिश कर रहा है। الذي يعيق في الحقيقة تقوية الجيش اللبناني على كل صعيد هي الإدارة الأمريكية। लेबनानी सेना के ताकतवर होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका है। हमारी संस्कृति में सेना उस स्वर्ण समीकरण का मूल भाग है जो राष्ट्र, प्रतिरोध और सेना पर आधारित है। अमेरिका को इस बात का डर है कि कहीं लेबनान की सेना इतनी ताकतवर न हो जाए कि उसकी माशूका यानी इसराइल के खिलाफ डट जाए। अपने भाषण के एक अन्य भाग में हिजबुल्ला के महासचिव ने सभी दलों को 77वीं लेबनानी सरकार के तेजी से गठन के लिए काम करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा देश के अंदर सभी प्रयास एक कैबिनेट बनाने के लिए होने चाहिए ताकि देश को इस गतिरोध से बाहर निकाला जा सके। हम बाहरी मदद की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं और लेबनानियों के लिए भी सही नहीं है कि वो दूसरों की मदद के इंतजार में बैठें। मैंने इस घटनाक्रम को लेकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी चेतावनी दी थी। कैबिनेट के गठन में भाग लेने के लिए लेबनान के राष्ट्रपति से कोई भी अधिकार नहीं ले सकता। नबी बेरी द्वारा पेश की गई योजना विभिन्न दलों को एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ले आई है, अर्थात मंत्रियों की संख्या पर समझौता हो चुका है। मैं ऐसे मामलों में जज की भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं हूं। बासिल की पेशकश एक दोस्त से मदद मांगने की थी और हमने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। संकट से निकलने का स्वाभाविक तरीका एक ऐसी सरकार का गठन है जो निर्णय लेने की क्षमता रखती हो। नसरुल्ला ने लेबनान में मौजूद व्यापक समस्याओं को लेकर कुछ लोगों द्वारा किए जाने वाले हमलों, विशेषकर समीर जाजा द्वारा की जाने वाली टिप्पणियों के बारे में कहा कि इस तरह की अतार्किक बातें देश को विस्फोटक स्थिति की ओर ले जाने की तरह हैं। हिजबुल्ला महासचिव ने कहा कि इस तरह के हमलों का जवाब न देने का उद्देश्य देश को इस तरह के फितनों से दूर रखने की कोशिश है।
हसन अजीम जादे, खबरगुजरी, सदा वसीमा, बेरूत।
और अब चलते हैं यमन और बात करते हैं देश की सेना और स्वयंसेवी बलों द्वारा सऊदी एजेंटों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष सैन्य अभियान की। इस बारे में सनआ से IRIB के संवाददाता अब्दुल्ला अल यूसेफी अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी अख्तर अब्बास की आवाज में।
यमनी
सेना की ड्रोन इकाई ने कासिफ के 2 नामक 10 ड्रोन विमानों के साथ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। यमनी सेना के प्रवक्ता के अनुसार पूर्वी यमन के हजरमूत प्रांत का वदिया इलाका जो सऊदी अरब की सीमा से लगा हुआ है वहां मौजूद सऊदी एजेंटों के एक महत्वपूर्ण सैन्य प्रशिक्षण केंद्र को निशाना बनाया गया। यमन की वायुसेना के प्रवक्ता ने बताया कि पूरी जानकारी मिलने के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जो पूरी तरह कामयाब रहा। ऑपरेशन के स्थान पर मौजूद हमारे सूत्रों ने सूचना दी है कि इस अभियान में 150 से अधिक सऊदी एजेंट मारे गए और घायल हुए जिनमें ज्यादातर सैन्य कमांडर शामिल
हैं।
यमनी सेना के एक प्रवक्ता के मुताबिक इस क्षेत्र पर यह हमला अभूतपूर्व हमला है जिसमें कमांड सेंटर और प्रशिक्षण केंद्रों उपकरण इकाइयों और अन्य लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन में सऊदी कमांडरों और अधिकारियों सहित 60 से अधिक भाड़े के सैनिक मारे गए। इस कामयाब ऑपरेशन के तुरंत बाद ही ड्रोन विमानों ने दक्षिणी सऊदी अरब के खमीस मशीद इलाके में किंग खालिद एयरबेस को निशाना बनाया। यमनी रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि आने वाले दिनों में और व्यापकता के साथ दुश्मनों के खिलाफ इस तरह के ऑपरेशन अंजाम दिए जाएंगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जवानों ने इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सारी जरूरी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, चाहे ऑपरेशन यमन के अंदर हो या सऊदी अरब के भीतर। एक अन्य सैन्य अधिकारी का कहना है कि दुश्मन लगातार पराजित हो रहा है। इस समय कामयाब ऑपरेशन के बाद हम बता देना चाहते हैं कि अगला ऑपरेशन इससे बिल्कुल अलग होगा क्योंकि अगले अभियान में हथियारों के भंडारों और सभी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। अगले ऑपरेशन में यमन की सशस्त्र सेना की बढ़ती ताकत का भी प्रदर्शन किया जाएगा।
توسيع القوات اليمنيه لنطاق اهدافها داخل اليمن
يمني بلوں نے یمن کے اندر اور سعودی عرب کے بھیتر کے شیتروں میں اپنے لکشوں کا وستار کیا ہے۔ یمنی سینا کی یہ کاروائی راجنیتک وارتا کی وفلتا اور اس کے گتیروت کے بعد ہوئی ہے کیونکہ امریکہ حملہور دیشوں کے ذریعے یمنی راشٹر پر اپنی من مانی تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایسی استھتی میں ہے کہ یمنی راشٹر کبھی بھی زور زبردستی کو سویکار نہیں کرے گا और साथ ही यमनी जनता एक सम्मानजनक शांति स्थापित होने तक प्रतिरोध की रणनीति को जारी रखने पर बल देती है।
अब्दुल्ला यूसुफी, खबरगुजार या सीधा वसीम सनआ।
और अब रुक करते हैं भारत का और बात करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कश्मीरी नेताओं के साथ की गई वार्ता और उसके परिणामों के बारे में। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
भारत प्रशासित राज्य जम्मू कश्मीर में नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद मिलीजुली प्रक्रिया सामने आई है और लोगों का कहना है कि नई दिल्ली ने कश्मीरियों को राहत पहुंचाने के लिए अभी तक कोई कार्य नहीं किया है। इस हवाले से श्रीनगर में विभिन्न वर्गों के लोगों ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि नई दिल्ली को चाहिए कि यहां पर कुछ ऐसा वातावरण बनाए जिससे यहां के लोग राहत महसूस करें। इस हवाले से पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए एक इंटेलेक्चुअल ने कहा,
सबसे पहले ये जो मीटिंग है एक अहम मीटिंग थी, इसे हम समझते हैं। कम से कम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो किसी की नहीं सुनती थी, आज उसी गुपकार गैंग को इन्होंने वापस बुला लिया बात करने के लिए। 370 हटने पर जो कहते थे कि ये डेवलपमेंट में बाधा है, 70 साल से इन्होंने घरेलू राज चलाया हुआ है, आप देख लीजिए ये एक काइंड का धोखलापन है। अगर ये लोग क्रिमिनल्स थे, बाधा थे, खानदानी राज था, तो फिर इन्हें इन्वाइट करके क्या दिखाना चाहते आप। यहाँ पर ये कहूँगा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उनका पलड़ा कमजोर होता हुआ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं इनके सामने। लेकिन अब हमारे मिनिस्टर्स के हाथ में था कि वो अपना स्टैंड कैसे लेते। आपने तारीगामी साहब का बयान देखा होगा जब वो बाहर आए कि इट वॉज नॉट अ फ्रूटफुल मीटिंग एट ऑल, ये तो कैटेगोरिकली उन्होंने कहा। उमर अब्दुल्ला साहब ने कल NDTV पे कहा क्लियरली कि जो मूव था 5 अगस्त 2019 का इलीगल था, और अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि वन नेशन हो, एक संविधान हो, एक निशान हो, तो आप लोगों ने 370 हटा के तो हमें धकेल दिया कहीं और, कोई आइडेंटिटी नहीं रही।
इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक नेताओं को यह समझा दिया है कि पिछले दो वर्षों में तमीर तरक्की के हवाले से नई दिल्ली ने कितनी योजनाएं लाई और उनका लाभ आम जनता को किस तरह हासिल हुआ। एलजी मनोज सिन्हा के एक प्रवक्ता ने कहा कि नई दिल्ली ने जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए जो कार्य आरंभ किया है वो जारी है और बहुत जल्द लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर पेंडेमिक नहीं हुआ होता तो यहाँ पर कश्मीरी लोग इसे लाभ कब का हासिल कर चुके होते। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली का ये मानना है कि कश्मीर से बेरोजगारी और तमाम समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ विकास में है और विकास के हवाले से नई दिल्ली उन तमाम वादों को पूरा करेगी जो उन्होंने कश्मीरियों से किए हैं। इस बीच पेंडेमिक के हवाले से भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज कर दिया है और बहुत ही कम समय काल में जम्मू कश्मीर का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा।
वैक्सीनेशन मेला जिले के मुख्तलिफ जगहों पर कंडक्ट किया गया है, आज से शुरू हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन मेले की सूरत में मेगा वैक्सीनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं।
सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
दोस्तों, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा नया सवेरा, लेकिन उससे पहले प्रस्तुत है मादक पदार्थों के खिलाफ संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, मादक पदार्थों से मुकाबले के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और मोहम्मद अली गुम्मी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम आपको मादक पदार्थ के अभिशाप और उसकी तस्करी को रोकने में इस्लामी गणतंत्र ईरान के अद्वितीय योगदान के बारे में बताएंगे। इस्लामी गणतंत्र ईरान मादक पदार्थों की तस्करी से मुकाबले की अग्रिम पंक्ति में है और उसके योगदान की विश्व समुदाय भी सराहना करता है। 5 तीर अर्थात 26 जून को मादक पदार्थों से मुकाबले का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मादक पदार्थों की तस्करी जहाँ इसके सौदागरों के लिए बहुत अधिक मुनाफे का कारोबार है, वहीं विश्व की वर्चस्ववादी शक्तियां मादक पदार्थों का प्रयोग विकासशील देशों पर वर्चस्व जमाने के हथकंडे के रूप में करती हैं।
राजनीतिक और सामाजिक मामलों के विश्लेषकों का मानना है कि विश्व की वर्चस्ववादी शक्तियां मादक पदार्थ को सांस्कृतिक धावे के लिए बेहतरीन हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं और इससे वे दूसरे देशों व समाजों में पैठ बनाती और प्रभाव बढ़ाती हैं। इस दृष्टि से मादक पदार्थों का अभिशाप किसी एक देश या समाज तक सीमित नहीं है और उसका अभिशाप भौगोलिक सीमा से बाहर हो गया है। दूसरे शब्दों में, अब मादक पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बन गया है।
मादक पदार्थों के पहले लक्ष्य युवा होते हैं और हर देश व समाज के युवा भविष्य होते हैं। समाज में मादक पदार्थों के सेवन के नुकसानों की गणना नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पर अगर कोई छात्र या छात्रा मादक पदार्थों के सेवन का आदि हो गया तो उसके स्कूल या विश्वविद्यालय की पढ़ाई चौपट हो जाएगी। यही नहीं, वो दूसरी बहुत सारी नैतिक बुराइयों में भी पड़ सकता है। सारांश ये कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
दोस्तों, बहुत से समाजों में ये भी होता है कि जिस परिवार का युवा नशा करने लगता है उसे लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते। कोई भी इंसान नशा करने वाले युवा से अपनी लड़की की शादी नहीं करता। नशा करने वाले बहुत से युवा शादी से पहले लड़की वालों को ये भी नहीं बताते कि वे नशा करते हैं, क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि अगर उन्होंने ये बात बता दी کہ وہ نشہ کرتے ہیں تو کوئی بھی انسان انہیں اپنی لڑکی نہیں دے گا۔
آج بہت سے لوگوں کا طلاق کیول اس بات پر ہو جاتا ہے کہ لڑکا نشہ کرتا ہے۔ جو لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، جب مادک پدارتھوں کی خریداری کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ دھیرے دھیرے گھر کے سامان کو بیچنا اور چوری کرنا بھی آرمبھ کر دیتے ہیں۔ سارانش ہے کہ نشے کا سیون سماجوں اور پریواروں کی بربادی کی جڑ ہے۔
کچھ کارنوں سے پشچم ایشیا کے دیشوں کو مادک پدارتھوں اور اس کی تسکری کا سب سے ادھک خطرہ ہے۔ جب اس پرکار کا خطرہ ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس خطرے سے بچنے کے لیے اس شیتر کے دیشوں کو انورت پریاس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سمبندھ میں ہر پرکار کی لاپرواہی مادک پدارتھ کی پہنچ کے سرل ہو جانے کا کارن بنے گی، اور جس سماج و دیش میں مادک پدارتھوں کی پہنچ آسان ہو جائے گی اسے اتنی ہی آسانی سے برباد کیا جا سکے گا۔
چونکہ دنیا میں مادک پدارتھوں کا سب سے زیادہ اتپادن افغانستان میں ہوتا ہے اور ایران افغانستان کے پڑوس میں استھت ہے، اور ان پدارتھوں کو یورپ تک پہنچانے کے لیے ایران سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے ایران کو مادک پدارتھوں سے خطرہ دگنا ہو گیا ہے۔ جس دیش یا سماج کے اندر مادک پدارتھ پہنچ جاتا ہے تو کوئی بھی اس کا شکار بن سکتا ہے، پرنتو سب سے زیادہ یووا ہی اس کے شکار بنتے ہیں۔
یہاں اس بات کا الیکھ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یووا پیڑھی ہر سماج یا دیش کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور سیدھی سی بات ہے کہ جس سماج یا دیش کی ریڑھ کی ہڈی ہی کمزور ہو جائے گی تو وہ ہر کھیتر میں کمزور و پیچھے ہو جائے گا۔
اس بات کا بھی الیکھ ضروری ہے کہ مادک پدارتھوں کے تسکروں کا مکھیہ لکش ان پدارتھوں کو یورپ تک پہنچانا ہوتا ہے، اور یورپ تک ان پدارتھوں کو پہنچانے کے لیے سب سے سستا، آسان اور نکٹ راستہ ایران سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس لیے مادک پدارتھوں سے مقابلے کے لیے ایران بہت پریاس کر رہا ہے۔ اس پرکار سے کہ اب تک مادک پدارتھوں سے مقابلے کے مارگ میں 4000 سرکشا بلوں کی شہادت دے چکا ہے، جبکہ 12000 سے ادھک سرکشا بل گھائل ہو چکے ہیں۔
अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केवल पिछले वर्ष ईरान ने 950 टन विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों को बरामद किया था। जिन देशों व समाजों में इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ पहुंचते हैं वहां कितनी तबाही मचती और कितने लोगों व परिवारों की बर्बादी होती है। दूसरे शब्दों में ईरानी सुरक्षा बलों ने हजारों नहीं बल्कि शायद लाखों लोगों को मादक पदार्थों के अभिशाप से बचाया है, اور مانواधिकार کی رکشا کا دم بھرنے والے کسی بھی دیش کو ایران کی یہ قربانیاں نظر نہیں آتی۔
آج دنیا کا شاید ہی کوئی دیش ہو جسے مادک پدارتھوں کے ابھیشاپ کا سامنا نہ ہو۔ بہت سے دیش مادک پدارتھوں سے مقابلے کے لیے کافی دھن و بل خرچ کر رہے ہیں، پھر بھی وبھن دیشوں میں مادک پدارتھوں کا سیون کرنے والوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے۔ اس سمے پوری دنیا میں لگ بھگ 3.5 کروڑ لوگ مادک پدارتھوں کے سیون سے پیڑت اور ان کے اپچار کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کا آبھاس 3 دشک پہلے سے کیا جا رہا ہے۔ مادک پدارتھوں کی تسکری اور نشے سے مقابلے کے لیے 26 جون 1987 کو ویانا میں ایک انتراشٹری کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں ایک پرستاؤ پارت کیا گیا تھا جس میں مادک پدارتھوں سے مقابلے پر بل دیا گیا تھا۔ اسی طرح ویانا میں ہونے والی اس کانفرنس میں شکشا و پرشکشا کے مادھیم سے مادک پدارتھوں کی روک تھام، پوستے کے کھیتوں کو برباد کرنے اور اسی طرح مادک پدارتھوں کے سمبندھ میں ایک دوسرے سے سہیوگ کرنے والے چینلوں کو نشٹ کیے جانے پر بھی بل دیا گیا تھا۔
ٹھوس رپورٹیں اس بات کی سوچک ہیں کہ ورش 2001 میں امریکہ اور اس کے گھٹک دیشوں دوارا افغانستان کا اتکرمن کر لیے جانے کے بعد اس دیش کی بہت ساری زمینوں پر پوستے کی کھیتی ہونے لگی۔ اس پرکار سے کہ راشٹر سنگھ کی رپورٹ کے انوسار افغانستان میں مادک پدارتھوں کی کھیتی میں 10 گنا کی وردھی ہو گئی۔ کچھ رپورٹوں کے انوسار ورش 2001 میں افغانستان میں لگ بھگ 180 ٹن افیم کا اتپادن ہوتا تھا، اور حالیہ ورشوں میں یہ ماترا 9000 ٹن پہنچ گئی ہے۔
अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के मुताबिक दुनिया में पैदा होने वाले हीरोइन का 93% भाग केवल अफगानिस्तान में होता है और अफगानिस्तान में 3 लाख हेक्टेयर से अधिक की जमीन पर पोस्ते की खेती की जाती है। अगर अफगानिस्तान के 3 दशकों के इतिहास पर नजर डालें और उसका विश्लेषण करें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये देश किन कारणों से मादक पदार्थों के उत्पादन का केंद्र बन गया।
जिन कारणों से अफगानिस्तान मादक पदार्थों का उत्पादन केंद्र बन गया उनमें सबसे महत्वपूर्ण इस देश में अमरीकी व विदेशी सैनिकों की उपस्थिति और पश्चिम एशिया के संबंध में अमरीका की विनाशकारी नीतियां हैं। अमरीका ने वर्ष 2001 में आतंकवादी गुटों से मुकाबले और सुरक्षा स्थापित करने के बहाने अफगानिस्तान पर हमला करके इस देश पर कब्जा कर लिया था और अब 20 वर्षों के बाद अमरीकी सैनिक ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान से जा रहे हैं जब वहां से न तो आतंकवादी गुटों का अंत हुआ और न ही अफगानिस्तान में शांति स्थापित हुई। यही नहीं, रोचक बात यह है कि अफगानिस्तान के जिन क्षेत्रों में अमरीकी और ब्रितानी सैनिक तैनात थे वहां पर मादक पदार्थों की खेती में कई गुना की वृद्धि हो गई। हालिया वर्षों में आतंकवादियों की आय का मुख्य स्रोत अफगानिस्तान है, यानी वहां मादक पदार्थों की होने वाली खेती।
हर साल 1500 से 2000 टन तक अफीम से गुप्त रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हीरोइन और मॉर्फिन बनाई जाती है और उसके बाद तस्कर ईरान के रास्ते यूरोप तक पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। इस समय पूरी दुनिया में हीरोइन का जो कारोबार है वो 500 अरब डॉलर से अधिक है और इस अवैध पैसे को पश्चिमी देशों के बैंकों में व्हाइट मनी में बदला जाता है।
अफगानिस्तान में मादक पदार्थों की खेती और उसकी यूरोपीय देशों के लिए तस्करी ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और ईरान इसकी तरक्की को रोकने के लिए अपने हजारों सीमा सुरक्षा बल के जवानों के प्राणों की कुर्बानी दे चुका है। ईरान ने मादक पदार्थों के तस्करों से मुकाबले के लिए लगभग 2000 किलोमीटर की सीमा के कुछ भागों पर दीवारें बना दी हैं, कटीले तार लगा दिए हैं, निगरानी करने वाली चौकियां बना दी हैं, कैमरे लगा दिए हैं और गहरी खाइयां खोद दी हैं।
इटली के पूर्व राजदूत अलेक्जेंडर स्कॉटी ने कहा है कि मादक पदार्थ का नियंत्रण एक चुनौती है जिसका सामना पूरी दुनिया को है। उन्होंने विश्व समुदाय का आह्वान किया है कि इन पदार्थों के नियंत्रण में ईरान की बहुत महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका को मान्यता दी जाए और इस्लामी गणतंत्र ईरान की सराहना के साथ इस संबंध में उसके साथ सहयोग को मजबूत किया जाए।
बहरहाल मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के संबंध में ईरान बहुत ही रचनात्मक व प्रभावी भूमिका निभा रहा है। जिन मादक पदार्थों को यूरोपीय और पश्चिमी देशों के लिए भेजा जाता है अगर ईरान उन्हें नहीं पकड़ता व रोकता तो इन देशों की स्थिति बहुत ही बुरी होती और शायद ही यूरोप का कोई देश मादक पदार्थों के अभिशाप से बच पाता।
ईरान ने मादक पदार्थों से मुकाबले में यूरोपीय देशों के गंभीर न होने के कारण बारंबार इन देशों की आलोचना की है। बहरहाल मादक पदार्थों से मुकाबले का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस बात के लिए बेहतरीन अवसर है कि ये बयान किया जाए कि मादक पदार्थों से क्या क्या नुकसान होते हैं, इन पदार्थों से मुकाबले में इस्लामी गणतंत्र ईरान ने जो कुर्बानियां दी हैं और दे रहा है दुनिया के किसी भी देश ने नहीं दी है और विश्व समुदाय विशेषकर यूरोपीय देशों को चाहिए कि वे मादक पदार्थों के विनाशकारी परिणामों दुष्प्रभावों के दृष्टिगत ईरान से ज्यादा सहयोग करें। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। नया सवेरा।
दोस्तों, कार्यक्रम नया सवेरा की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज के कार्यक्रम में हम ताज़ा मुसलमान होने वाली एक अमेरिकी लड़की से परिचित कराएंगे। मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। अमेरिका की ताज़ा मुसलमान हुई लड़की का नाम सेल्विया मेंसी काल्को है, जिन्होंने दूसरे लोगों की तरह इस्लाम के बारे में सुनने और अध्ययन करने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार किया। सेल्विया के माता पिता का संबंध ईसाई धर्म से है और वो उसके बचपन में ही एक दूसरे से अलग हो गए। सेल्विया अमेरिका के बुरे और भ्रष्ट माहौल में आज़ाद छोड़ दी गई। पश्चिम में तलाक की दर बहुत अधिक है, इसलिए वहाँ पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चे गुमराही का शिकार हो जाते हैं। तलाक की दर में वृद्धि की वजह से यूरोप में रहने वालों में न केवल विवाह में रुचि नहीं है, बल्कि यूरोप में पैदा होने वाले बहुत से बच्चे अवैध संबंधों का परिणाम होते हैं। यूरोप में इस तरह के केसेस की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस समय अमेरिका में आधी से अधिक शादी तलाक की वजह से टूट जाती है, जबकि 40% लोग विवाह करना ही पसंद नहीं करते। बहरहाल, सेल्विया के सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी हुई थी और उसने गिरे मन से जिंदगी का पहिया आगे बढ़ाने और पढ़ने का क्रम जारी रखा। हाई स्कूल की पाठ्य पुस्तक में उसने सबसे पहले इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा, जहां दुनिया के विभिन्न धर्मों के साथ साथ इस्लाम के बारे में आधी अधूरी जानकारी दी गई थी। आखिरकार इटली मूल की इस अमेरिकी लड़की का रुझान अमेरिका के सबसे भ्रष्ट संगीत जगत की ओर होने लगा और धीरे धीरे उसने संगीत की दुनिया में नाम कमाना शुरू कर दिया। संगीत जगत में अपने रुझान के बारे में वो कहती है कि मेरे पास बहुत ज्यादा काम था, हर सप्ताह के अंत पर मेरा कंसर्ट होता था, मेरे पास पैसों की भरमार हो गई थी, लेकिन सब कुछ पैसा और ख्याति नहीं होती। मन की शांति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और इस बात के साबित होने के लिए कभी कोई घटना घट सकती है। दोस्तों, सेल्विया की जिंदगी की ये हिला देने वाली घटना एक मेडिकल रिपोर्ट और पत्र से शुरू होती है, जिसमें बताया गया है कि मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य खतरे में है और जितनी जल्दी हो सके मेडिकल सेंटर का रुख करो। खत पढ़ते ही मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो कहती है कि इस पत्र ने मुझे पूरी तरह झिझोर कर रख दिया, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था कि टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है। पत्र शुक्रवार की शाम मुझे मिला, इसलिए मुझे शुक्रवार की सुबह तक इंतजार करना था, क्योंकि हफ्ते के अंत की छुट्टियां थी। मुझे ये फिक्र खाई जा रही थी कि मैं किसी लाइलाज बीमारी में ग्रस्त हूं और मेरी मौत नज़दीक है। यद्यपि बाद में पता चला कि लैब से गलती हुई थी, लेकिन मुझे तो सामने मौत ही नज़र आ रही थी। वही कुछ दिन मैंने मौत को अपने सामने देखा। दुनिया से निराशा, सामने दिखने वाली खुशियों से निराशा, जल्द खत्म होने वाले आनंद के बारे में सोचते सोचते मैं ईश्वर और मौत के बाद की दुनिया के बारे में सोचने लगी। यहीं से मेरा नज़रिया पूरी तरह बदल गया। वो उस दिन के बारे में कहती है कि वो 2-3 दिन मेरे लिए बहुत सख्त था और उसने मुझे अपनी ज़िंदगी पर पुनर्विचार करने और ईश्वर के साथ अपने संबंधों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے آس پاس دوسروں کی نظر سے دیکھا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے اپنی ساری عمر دوسروں کی برائی کرنے میں، فیشنیبل کپڑے پہننے میں، اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں، ٹی وی، میوزک اور بیکار کے کاموں میں گزار دیے۔ اس نوجوان امریکی لڑکی کے ساتھ گھٹنے والی گھٹنا سورہ بقرہ کی آیت سنکھیا 216 کی یاد دلاتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اور یہ بھی سمبھو ہے کہ جسے تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جسے تم پسند کرتے ہو وہ بری ہو۔ ایشور سب کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سلویا کے درشٹکون میں بدلاؤ کے بعد ریپر کے کپڑوں میں اس کے لیے گانا گانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے من کی بات کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ اسی سپتاہانت پر ایک کنسرٹ تھا، یہ چرن میرے لیے بہت سخت تھا کہ میں ریپر کے کپڑے میں اسٹیج پر جاؤں اور لوگوں کے سامنے ناچ گاؤں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دوں۔ اسی سمے میں نے گانا بجانا چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن کافی سمے کے بعد مجھ میں یہ کام چھوڑنے کا ساہس پیدا ہوا۔ اس امریکی لڑکی کو پہلے سے ہی اسلام دھرم کے بارے میں پتا تھا، اس لیے اس کی جگیاسا اس دھرم کو لے کر بڑھنے لگی۔ اس نے دنیا، انسان اور سرشٹ کے بارے میں اس آسمانی دھرم کی شکشاؤں پر وشواس کرنے کے بعد اس کے بارے میں ادھیان شروع کیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں بنا کسی ترک اور دلیل کے کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن میں نے اسلام دھرم کے شکشاؤں کو بہت ہی ترک سنگت اور تارکک پایا اور آخر میں مسلمان ہو گئی۔ وہ اسلام دھرم سویکار کرنے کا ایک کارن بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ عیسائی دھرم کی کچھ شکشائیں اسلام دھرم سے میل کھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ نہ کیول حضرت عیسیٰ کے نماز و روزے بلکہ ان کی دوسری شکشائیں بھی اسلام دھرم سے بہت نکٹ اور ملتی جلتی ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ بند میرے لیے بہت ہی روچک تھا کہ اسلام اور عیسائی دھرم دونوں ہی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو جیوت مانتے ہیں اور ان کے لوٹنے پر وشواس رکھتے ہیں۔ سیلویا کہتی ہے کہ پراچین کال میں کھانے اور پینے کے قانون کو پڑھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کھانے پینے کے حرام اور حلال تتھا پوترتا کے بارے میں وہی نیم ہیں جو اسلام دھرم میں ہیں۔ البتہ پوتر قرآن کھلے شبدوں میں کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کدابی مارا نہیں گیا، وہ زندہ ہیں، لیکن عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور ان کی آتما آسمان پر چلی گئی اور ایک دن واپس آئے گی۔ اسلام دھرم نے دھیرے دھیرے سیلویا پر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ وہ اپنے بھیتر ہونے والے پریورتن کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ یہاں وہاں جا کر کنسرٹ کرنا اور گانا بجانا اور مسلمان ہونے سے کوئی میل نہیں کھاتا۔ میرا نیا دھرم دھیرے دھیرے میری زندگی، میرے برتاؤ اور میرے پہناوے میں صاف صاف نظر آنے لگا۔ سیلویا نے جیسے ہی نیا دھرم اپنایا اس کی ماں کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا اور وہ اسے اس راستے سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اس کی ماں کی ساری کوششیں بیکار ہو گئیں تو اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو اٹلی بھیج دیا تاکہ وہ فیملی کے دوسرے سدسیوں کے ساتھ جیون بتائے اور یہاں کی باتیں بھول جائے۔ لیکن اٹلی کے سفر میں بھی سیلویا کے ساتھ ایک گھٹنا گھٹتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس یاترا نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ میں پہلے سے ادھک اللہ سے نکٹ ہو گئی ہوں۔ یہ احساس کا جاگنا تھا کہ انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا اور اپنے سارے کنسرٹ کینسل کر دیے۔ کچھ دن کے بعد وہ امریکہ واپس آ گئی اور اس نے پوری طرح سے ریپ سے دوری بنا لی اور پھر وہ اسلامی حجاب کرنے لگی، اور اس کے اس فیصلے سے اس کے ماں باپ کو کافی غصہ آیا اور انہوں نے اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا۔ आखिरकार सेल्विया के माता पिता भी मान जाते हैं। इस बात को लेकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहती है कि मैं खुश हूँ कि मेरे माँ और मेरे माता पिता के धर्मों में अंतर होने के बावजूद हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और मुझे इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी। वो बताती है कि माता पिता से मेरे संबंध कैसे अच्छे हुए। वो कहती है कि इस्लामी पुस्तकों के अध्ययन के दौरान मुझे एक पुस्तक मिली जिसका नाम सहीफे सज्जादिया था। इस किताब ने मेरे और मेरे माता पिता के संबंधों को बेहतर बनाने में मदद की है। सहीफे सज्जादिया में कुछ दुआएं माता पिता के बारे में भी हैं। वो कहती है कि जब मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मेरे हक में बुराई की है तो मैंने ये दुआ पढ़कर अपने गुस्से को ठंडा किया। सेल्विया एक सक्रिय मुस्लिम लड़की है और उसकी मजबूत इस्लामी आस्थाओं और विचारों ने उसके छोटे भाई और मौसी की बहन को भी मुस्लिम बना दिया। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें अनुमति दें। खुदा हाफिज।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अंत में आज के मुख्य समाचारों का सारांश एक बार फिर। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा है कि देश में कोरोना के फैलाव में कमी आई है, जबकि आज ईरान द्वारा बनाई गई एक और कोरोना वैक्सीन का अनावरण हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि तेहरान कभी भी परमाणु समझौते से अलग नहीं हुआ था कि अब उसमें वापस आए। हमास का कहना है कि ज़ायोनी शासन के साथ बंदियों के आदान प्रदान के मामले में प्रतिरोध को अभी भी वरीयता हासिल है। और दिल्ली पुलिस ने इसराइली दूतावास के करीब हुए धमाके के मामले में कारगिल के 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है parstoday.com/hi। तो इसी के साथ हमारी ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। हसन अब्बास और साथियों को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।